फैन बंद कर दो।
हरे हरे, आप सबका स्वागत है रविवार के साप्ताहिक संडे लव किस प्रोग्राम में। और आज हमारे बीच में इस गए प्रशांत मुकुल प्रभु। हम इनके बारे में वैसे तो आप सब लोग जानते होंगे, पहले भी लेक्चर दे चुके हैं कई बार, फिर भी जो लोग नए आए उनको बताना चाहते हैं, प्रभु जी ने MBA सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद डिप्लोमा फ्रॉम फार्मा लंदन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट और BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से कराए और अभी पूर्ण रूप से भगवान जी की सेवा में है। इनको हम बोलते हैं द्वारका के हनुमान जी। द्वारका में हनुमान जी आपने कभी सुना है? आज देख सकते हैं आप हनुमान जी का कार्य क्या था, सीता मैया को भगवान राम की सेवा में लगाना ना, इसी तरह से इनका कार्य लक्ष्मी को विष्णु की सेवा में लगाना। तो ये भी हमारे द्वारका मंदिर के लिए फंड रेज करते हैं, लक्ष्मी जो है उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं, द्वारकाधीश की सेवा में। तो इनके लिए जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। अभी जो है आप जैसे कि सब जानते हैं, बच्चों के लिए यहाँ पे एक और प्रोग्राम होता है गोपाल फन स्कूल, जो कि पीछे ऑलरेडी चल रहा है, तो जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं उनको आप वहाँ भेज सकते हैं। आई एम श्योर कि वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे। बाहर माता जी खड़ी हैं, तो वो आपको लेकर के जाएंगे उधर। मैं उधर ही आ रहा हूँ, आप वहाँ पे आ सकते हैं बच्चों को लेकर।
10-15 मिनट तक क्वेश्चन आंसर, 8:30-8:40 करके 10 मिनट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद अनाउंसमेंट्स है। ऑप्शनल है जयराधा माधव, आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते
हैं। थैंक यू।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है? पीछे वाले भक्तों को आवाज सुनाई दे रही है? नहीं आ रही है? हरि बोल। आप लोग प्लीज कृपया करके आगे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कार्मिक रिएक्शन है, म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया है हमारा, ये है। तो माता लोग भी थोड़ा आगे आ सकते हैं यहाँ पर नजदीक, ताकि ये स्पीकर जो है आपको इसकी आवाज सुनाई दे सके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वन चार, यमुना तीरा तीरा वन चार, यमुना तीरा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, दूंगा बिहारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए, ताली बजा के जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव राधा माधव राधे जय। गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। नीताय गौरा हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो, नीताय गौर हरि। सभी बोले श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, पंच तत्व गौर निताय की, पतिता पावन श्रील प्रभुपाद की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं भगवद गीता के सत्र में, उसमें आज हम तीसरे अध्याय की चर्चा करने वाले हैं। जानते हैं आप में से कितने लोग की आज हम तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे? कुछ एक आधा लोग जानते हैं। तो पिछली दफा हमने जो है दूसरे अध्याय को खत्म किया जो गीता का सार है, और अब तीसरा अध्याय जिसका नाम है, बता सकता है कोई क्या नाम है भगवद गीता तीसरे अध्याय का? हाँ, कर्मयोग। तो कर्मयोग की चर्चा करने जा रहे हैं, प्रयास करेंगे आज कर्मयोग के बारे में चर्चा करें। तो इसके अंदर जो है अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से। इस अध्याय से पहले दूसरे अध्याय में अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक 54 श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान कृष्ण से, और उसके बाद निरंतर 17 श्लोकों में कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया है अर्जुन के प्रश्न का, और उसके बाद फिर दोबारा से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं मानव जाति के भले के लिए, फायदे के लिए। तो आज हम उस श्लोक को पढ़ेंगे और आप दोहराने का प्रयास करिए जिनके पास भगवद गीता है। अर्जुन वाच ज्यायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम निवो ज्यायसी केशव। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मनस्ते माम मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो इस श्लोक के अंदर अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। वहां पर अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, मतलब जो हम कर्म करते हैं उससे अगर आप श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर, घोर का अर्थ है कि अपने संबंधियों का वध करने में क्यों लगाना चाहते हैं। तो मंगलाचरण करेंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद फिर इस श्लोक पर चर्चा करेंगे, आप साथ में दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञान तिम्रंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दकान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगनललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो जो ये भगवद गीता है इसके 3rd अध्याय के 1st श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो ये महाभारत का युद्ध था ये 18 दिनों तक चलता रहा। तो 18 दिनों के युद्ध में कौरवों की साइड से 11 अक्षुणी सेनाएं लड़ रही थी और पांडवों की साइड से 7 अक्षुणी सेनाएं युद्ध कर रही थी, है ना। तो जो 11 अक्षुणी सेना थी इसके अंदर जो एक अक्षुणी सेना होती है उसका अगर हम पूरा समझें ब्यौरा कि एक अक्षुणी सेना में कितने योद्धा, कितने हाथी, कितने घोड़े होते हैं, तो बताया गया है कि 21,870 जो है रथ होते हैं एक अक्षुणी सेना के अंदर, 21,870, है ना, और 21,870 हाथी होते हैं एक अक्षुणी सेना के अंदर, और 65,610 घोड़े होते हैं, और लगभग 1,00,000 पैदल सैनिक होते हैं, है ना। इतनी बड़ी एक अक्षुणी सेना थी और 11 अक्षुणी सेना जो है कौरव के साइड थी, मतलब जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र हैं, और पांडवों की साइड पर 7 अक्षुणी सेना युद्ध कर रही थी। देखा जाए तो कौरव और पांडव कहना गलत है क्योंकि सबके सभी कौरव हैं। कौरव का अर्थ कुरु वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति कौरव कहलाता है। तो जो कौरव है दुर्योधन और पांडव जो पांडु के पुत्र हैं ये सब कुरु वंशी ही हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र ने जिस प्रकार कहा कि कौरव और पांडव दोनों अलग अलग हैं तो हम उसी के अंतराल चर्चा करते हैं। तो बताया गया है कि इस पूरे महाभारत के युद्ध में अंत होने पर तकरीबन 1,66,20,000 लोग मारे गए थे। 1,66,20,000 लोग, आप सोचिए कि इतना बड़ा जो युद्ध हुआ वो सबका सब महाभारत के अंदर वर्णन है। तो जो महाभारत है इसको हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का मतलब इतिहास, ऐसा हुआ है ना। तो महाभारत इसका मतलब एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब आज से कुछ समय पहले ऐसा हो चुका है। और इस महाभारत के युद्ध को शुरू होने से पहले जो कृष्ण द्वारा कहे गए गीत हैं उनको हम भगवत गीता कहते हैं। तो जो भगवत गीता है इसका मतलब भगवत गीता भी सत्य है, क्योंकि महाभारत सत्य है, क्योंकि ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब भगवत गीता में जिस तरह बताया गया वैसा भी हुआ है। तो बताते हैं कि युद्ध के अंत होने पर 11 अक्षुणी सेनाओं में से सिर्फ 3 लोग बाकी बचे थे कौरवों की साइड में। कौन? एक अश्वत्थामा, जिनको अमर होने का वरदान था, कृतवर्मा और कृपाचार्य। 3 लोग जो हैं वो बचे हैं कौरवों की सेना में। और जो पांडव हैं उनकी सेना में 5 लोग बचे थे। वैसे देखा जाए तो एक अक्षुणी सेना बच गई थी युद्ध के बाद, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने गुस्से को कंट्रोल न कर पाया कि मैं हार गया हूं। और इसलिए उसने क्या किया कि जब सब लोग सो रहे थे तो उनके टेंट में आग लगा दी, और यहां तक कि पांडवों के 5 पुत्रों को भी सोते हुए मार दिया। तो इस प्रकार से दुर्व्यवहार करने के कारण भगवान ने उसको श्रापित किया, उसकी मनी वगैरह छीन ली। वो लंबी कथा है, किसी और दिन चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो एक अक्षिणी सेना भी समाप्त हो गई और सिर्फ 5 लोग बचे, भगवान कृष्ण, 5 पांडव और एक कृष्ण भगवान का जो था सारथी, जिसका नाम है सात्यायकी। तो ये 5-7 लोग बचे हैं पांडव सेना में, और कौरव सेना में 3 लोग बचे हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन ने यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि इतना बड़ा जो युद्ध होने जा रहा था उससे पहले अर्जुन बार बार इस चीज को पूछ रहा है कि भगवान आप मुझे ऐसे घोर लगाने जा रहे हैं। अभी देखा जाए तो एक व्यक्ति जो कि इतनी बड़ी सेना को मार रहा है, 1,66,00,000,000 लोगों को मारने का, उसको क्या करना चाहिए? किसी व्यक्ति ने इतना मर्डर किया है क्या करेंगे उसको? हाँ, जेल में डाल देंगे उसको, फांसी लगा देंगे उसको। अरे क्या किया भैया, 1,66,000,000 लोगों को आपने मार डाला। लेकिन उनको क्या किया, अर्जुन को धाम प्राप्त हो रहा है। क्यों जानते हैं क्या कारण? हाँ, भगवान के अनुसार उन्होंने किया है। तो हमको अपना जीवन अगर हम भगवान के अनुसार चलाते हैं तो हमको उस कर्म को करने का पाप नहीं लगता है। आप देखिए कि एक व्यक्ति है बॉर्डर पर खड़ा है और गोलियां चला रहा है, चक 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 चक, उसने खूब सारी गोलियां चलाई है ना, और वापिस आया दुश्मनों को मार के, तो क्या मिलता है? मेडल, यू आर अवॉर्डेड, आप जो है कैप्टन बनते हैं। क्यों? आपको मेडल मिल रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर दुश्मनों को हराया। और वही व्यक्ति अभी आ रहा है अपने घूमने के लिए दिल्ली में, और उसके पास वो रिवॉल्वर है गवर्नमेंट से जो मिली है, और किसी से उसकी लड़ाई हो गई और उसने क्या किया, अपने रिवॉल्वर से गुस्से से एक आदमी को एक गोली मारी, क्या मिलेगा उसको? सजा। क्यों? क्योंकि उसने वहां पर किसके ऑर्डर पे चलाया? कमांडर के ऑर्डर पे फायर, और उसने मार डाला। और यहां पर किसके ऑर्डर से चलाया? अपने मस्तिष्क, अपने मन के ऑर्डर से, और इसलिए उसको क्या मिला? सजा। इसीलिए इस अध्याय का नाम है कर्म योग, वो योग जिसका करने से हम बंधन में नहीं बंधते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म करो बस, फल की इच्छा क्या करो बस, यही गीता के बारे में जानते हैं। तो कर्म ऐसा कर्म हो जिसका हमको कोई रिएक्शन ना हो, जिसके बाद हमको कोई कष्ट ना भुगतना पड़े। तो ऐसा कर्म तभी हो सकता है जब वो कृष्ण के आदेशों के अनुसार होगा। इसलिए कहते हैं यम शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तन्ते कामकरात्, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ करके कार्य करता है उसको ना तो शांति की प्राप्ति होती है, ना सुख मिलता है, ना परम गति प्राप्त होती है ना। तो हमको ऐसे कार्य करने चाहिए जैसे कि भगवान कृष्ण हमको यहाँ बता रहे हैं। तो आप सोचते होंगे कि अर्जुन जो है वो इतने बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछे कृष्ण भगवान से? वो क्या जानते नहीं थे? लेकिन उन्होंने किसके लिए प्रश्न पूछे हैं? हमारे लिए। जिस प्रकार से घर के अंदर एक नई दुल्हन आती है तो उसको ऑर्डर नहीं दे सकते ना कि तुम ऐसा करो ये करो, नाराज हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी, मायके चली जाएगी। तो उसको सास क्या करती है, अपनी बेटी को क्या बोलती है जोर जोर से, अरे बेटी तुम्हारे जो ससुर, तुम्हारे जो फादर हैं वो क्या खाते हैं, तेज मिर्ची नहीं खाते हैं, तेज मिर्ची नहीं खाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, अपनी बहू को बता रही है। बेटी कह रही है मैं तो पिछले 20 साल से सुनती हूँ कि पिताजी मिर्ची नहीं खाते हैं, मुझको क्यों बता रही हैं? किसके लिए बता रही हैं? बहू के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं घोर कर्म में ना लगूं, ये किसके लिए पूछ रहे हैं? हमारे लिए। अर्जुन जानते हैं कि कर्म योग क्या है, कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करना चाहिए। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस प्रकार से कर्म योग होना चाहिए। उससे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर भगवान के दो नामों को पुकारा गया है। पहला नाम भगवान का बोला गया जनार्दन। क्या बोला गया? हाँ, बुद्धि जनार्दन। और उसके बाद फिर बोला गया एक शब्द और, कौन सा नाम आया भगवान का? हाँ, केशव। तो इन दोनों नामों का क्या अर्थ है, और भगवान अर्जुन जो यहाँ पर भगवान के भक्त हैं, वो क्यों जनार्दन और केशव शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? आप देखिए पूरी भगवद गीता में भगवान अलग अलग नामों से भगवान पुकार रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन अलग अलग नामों से बार बार कृष्ण को पुकारते हैं। क्या कृष्ण बोल रहे थे वो समझते नहीं कि मेरे से प्रश्न पूछ रहा है, जब दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है? क्यों बार बार अलग नाम से? ताकि भगवान की महिमा का गुणगान हमारे जैसे बुद्धिजीवी समझ सके, है ना। तो बताते हैं जनार्दन का अर्थ क्या होता है, कि जनार्दन का अर्थ है वो व्यक्ति जो कि भगवान के भक्त, जो असुर होते हैं ना, जो भगवान के भक्तों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उनको पीड़ा देने वाला जो व्यक्ति है उसको जनार्दन कहा जाता है। जिस प्रकार से एग्जांपल आता है, दुर्योधन जो थे उन्होंने भगवान के भक्त अर्जुन को पीड़ा पहुंचाई ना, शुरुआत से उनको कष्ट देना शुरू कर दिया। पिकनिक पर जाते हैं तो उठाकर भीम को पानी में फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन हमेशा दुखी करे गए किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। तो भगवान के लिए जब भगवान द्वारका मतलब दुर्योधन के पास इंद्रप्रस्थ में आ रहे हैं तो फूलों का रास्ता बनाया गया है, लेकिन दुर्योधन के उस फूलों के रास्ते पे कृष्ण चलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो कौन है? भक्तों को कष्ट देने वाला असुर है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं इसके रास्ते पे नहीं चलूंगा। और उन्होंने 56 भोग लगाए थे, लेकिन क्या खाए भगवान ने? नहीं, उनके छोड़कर किसके घर खाया? विदुर के घर। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो ना पछतायो। पछताते नहीं भगवान। तो वो अपना 56 भोग छोड़कर विदुर के घर जाकर खाना पसंद है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना कभी कुछ भी मैं लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे मुझे स्वीकार है। भगवान कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त या प्रियच्छति। प्रेम से मुझे एक पत्ता फूल भी दोगे तो मुझे एक्सेप्ट है, लेकिन अगर तुम जो है टेक्निक लड़ाओगे ना भक्ति में आने के बाद में, ये ऐसा वैसा भगवान को कैप्चर, तो भगवान समझ जाते हैं, क्योंकि सब कुछ सृष्टि को चलाने वाले कृष्ण ही है। तो भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए उनका नाम जनार्दन है। और बताते हैं कि असुरों का वध करने वाले को भी जनार्दन कहते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने अभी कुछ ही समय पहले पिछले हफ्ते क्या था जो आया नरसिंह चतुर्दशी, उस दिन भगवान आते हैं किस रूप में? नरसिंह रूप में आते हैं। और किसको मारने के लिए आते हैं? हिरण्यकश्यप को, क्योंकि उसने इस प्रकार का वर मांगा कि मैं ना दुबो मरू, ना शाम को मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अताल में ना पाताल में। तो इस प्रकार के वर मांगने के बाद भी कृष्ण जनार्दन होने के नाते आते हैं ऐसा रूप रख के कि जिसको कोई समझ नहीं सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, उनको समझना हमारी बुद्धि में नहीं है। तो भगवान आते हैं नरसिंह रूप रखकर और क्या करते हैं? हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। इसलिए भगवान को बोला जाता है जनार्दन। और बताते हैं असुरों का संपूर्ण जाति को नष्ट करने वाले को भी जनार्दन कहते हैं। जिस प्रकार श्री रामचंद्र ने क्या किया, जाकर श्री लंका में क्या कर दिया, सारे के सारे असुरों को मार डाला, रावण के सहित सारी सेना को। जब पता चलता है कि रामचंद्र वध करने आ रहे हैं अयोध्या पे, श्रीलंका में चढ़ाई करना चाहते हैं, तो 14,000 राक्षसों को लेकर खरदूषण चढ़ जाता है भगवान राम के ऊपर, लेकिन फिर भी भगवान राम क्या करते हैं, सबके सबको वध कर देते हैं। इसलिए असुरों की असंख्य सेना को मारने के कारण उनका नाम पड़ता है क्या? जनार्दन। और भक्तों के कष्टों को तारने वाले का भी क्या नाम है? जनार्दन। तो चार प्रकार से अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं भक्तों के कष्टों को तारने वाले जनार्दन। कैसे? कि गजेंद्र की एक कथा आती है कि गजेंद्र एक हाथी था, वो क्या कर रहा था, अपने परिवार के साथ चलता था, उसकी पत्नी भी थी, उसके बच्चे भी थे, और असंख्य पत्नी बच्चों के साथ मद मस्त होकर कहाँ चलता था? सुमेर पर्वत के पास चलता था। बहुत बड़े मिल्की झरने थे वहां पर, दूध की नदियां बहती थी, वहां चल रहा है आराम से मस्ती में, लेकिन भूल गया क्या कि मैं कौन हूँ? काम आसक्त हूँ, मेरे इतना परिवार है, इतने बच्चे हैं। और फिर क्या करता है, जल क्रीड़ा करने के लिए जल में उतर जाता है, और जल में जाकर खूब जल क्रीड़ा कर रहा है, पानी सूंड से भरकर पानी अपने ऊपर डालता है, मस्ती में रहता है। इतने में एक ग्रह उसको मगरमच्छ पकड़ लेता है, और फिर क्या कहता है, बुलाता है कि हे पत्नी है बच्चे मुझे बचा लो। बचाते हैं सबके सब, उसकी पूंछ में रस्सी जैसे बनाते हैं ना, वो खेलते हैं रोप वाला गेम, एक की पीठ में एक, पूंछ में सूंड फंसा फंसा के एक लंबी चेन बना लेते हैं, लेकिन ना पत्नी बचा पाती है ना बच्चे, बच्चे हार जाते हैं। कहते हैं क्या करेंगे पिताजी के साथ जाके, हैं हम तो थक जाएंगे, हमें भी पानी में ले जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे, पिता तो दूसरे मिल जाएंगे, जान दूसरी थोड़ी मिलेगी। लोग भी ऐसे ही सोचते हैं आजकल, है ना, वी हैव मैनी फादर, ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है, पिता दूसरे नहीं मिलेंगे, भगवान की कृपा से हमको एक ही पिता मिला है, कौन, जगन्नाथ, जगत के नाथ हैं कृष्ण, दोबारा नहीं मिलेंगे, उनके पैर पकड़ लेने चाहिए। तो बच्चे छोड़कर चले गए, पत्नी भी कहती है ओ हाथी दूसरे मिल जाएंगे, ऐसे आप लड़कियां भी बोलती हैं आजकल, तो वो छोड़कर चली जाती हैं, और एंड में कौन बचता है, वो अकेला, क्योंकि पिछले जन्म में वो एक भक्त था, इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार जागृत होने के कारण क्या करता है, जोर से पुकारता है, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसने सिर्फ ये मंत्र के बारे में सोचा ही था और मुख से निकला हे गोविंद, पूरा विंद भी नहीं बोला कि गो बोलते ही भगवान द्वारका से दौड़े चले आए और भगवान ने अपने चक्र से उसकी गर्दन काट दी, किसकी, मगरमच्छ की, और फिर भगवान ने जो है उसको बचाया। तो लोग पूछते हैं कि मगरमच्छ की गर्दन क्यों काटी, क्योंकि वो शिक्षा गुरु है, उसकी शिक्षा के कारण आज हाथी को अपने पूर्व जन्म के संस्कार याद आए कि कृष्ण ही है एक जो मुश्किल में हमारी मदद कर सकते हैं, अन्यथा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। इसलिए हर पल ना अपनी पत्नी पर डिपेंडेंट होइए, ना अपने बच्चों पे, किस पर डिपेंडेंट होइए, सिर्फ केशव गोविंद रुक्मणी द्वारकाधीश पर डिपेंडेंट होइए। कोई आपकी मदद नहीं करेगा इस संसार में, सिर्फ एक कृष्ण है जो आपकी मदद करते हैं। भगवान आते हैं अपने भक्तों के पुकारने पर, जब भाव से पुकारोगे तो दौड़े चले आएंगे, भगवान आते हैं। और भगवान ने आकर क्या किया, बचा लिया। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप कौन है, जनार्दन है, आपने उस गज को बचाया तो मुझको भी इस पीड़ा से बचा लीजिए, हे कृष्ण मेरी मदद करिए, इसलिए उनको बताया है नाम जनार्दन। और केशव क्यों बोला, तो केशव इसलिए बोला क्योंकि केशव का अर्थ है कि जिस मास में ये भगवत गीता बोली गई, उस मास में बोलते ना दिसंबर के महीने में भगवत गीता जयंती आती है, उसको हमारे कैलेंडर में, वैष्णव कैलेंडर में, उसको केशव मास बोलते हैं। हे केशव मास में उत्पन्न, हे केशव, तुम जो है, तुम्हारे होते हुए भी इतना बड़ा घोर अपमान होने वाला है, इतने सारे लोग मारे जाने वाले हैं, तो इसको आप कैसे भी करके बचा लीजिए। ये कौन बोल रहे हैं, अर्जुन, केशव। और फिर केशव का एक और अर्थ होता है कि जो केश जिसके घुंघराले हैं, है ना, भगवान के बाल घुंघराले हैं, कितने सुंदर हैं, तो भगवान के घुंघराले और टेढ़े भी हैं बाल, तो वो कह रहे हैं अर्जुन कि हे कृष्ण तुम्हारे बाल इतने टेढ़े हैं, तुम मुझे कैसे टेढ़े कर्म में लगा रहे हो, हे केशव, उससे उनका ये भी तात्पर्य है। और केशव का अर्थ होता है के का मतलब ब्रह्मा और श का मतलब शिव और व का मतलब वपु, तो मतलब कहना चाहते हैं कि हे केशव, जिस केशव के अंदर के मतलब ब्रह्मा, श मतलब शिव, शिव और ब्रह्मा जिसके अंदर हैं वो केशव हैं। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से आपको ब्रह्मा शिव सबकी भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए उनको बोल रहे हैं केशव आप इतने महान हैं, आपको पाने से सब कुछ पाना हो जाता है, फिर आप मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बार बार काफी सारे तात्पर्यों से सोचकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं केशव का मतलब है कि वो जो राधा रानी के केशों को निहारते हैं, एक लीला करते हैं, माधुर्य लीला। तो वो कह रहे हैं अर्जुन कि आप एक तरफ माधुर्य लीला करते हैं राधा रानी के साथ और एक तरफ आप ये युद्ध लीला करने वाले हैं, कितना मतलब विपरीत है। एक व्यक्ति या तो हसमुख हो सकता है या क्रोधी हो सकता है, लेकिन कृष्ण ऐसे हैं कि जो हर प्रकार की लीला करने में निपुण है, इसीलिए वो कौन है, जनार्दन कृष्ण है, भगवान है, जगन्नाथ है, जो जगत के नाथ है। तो इस प्रकार से उन्होंने बार बार पुकारा। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कि क्यों वो कर्मयोग का अर्थ क्या होता है। देखें तो तीन प्रकार के कर्मों का वर्णन भगवद गीता में है। एक को बोला जाता है कर्म, क्या बोलते हैं, कर्म। कर्म मतलब जो शास्त्र विधि के बताए अनुसार जो कर्म होता है उसको कहते हैं कर्म। और एक होता है विकर्म, शास्त्र विधि में बताए गए रास्ते के अनुसार कर्म ना करना विकर्म। और एक होता है अकर्म, क्या होता है, अकर्म मतलब लोग समझते हैं कोई कर्म नहीं करना, खाली बैठ जाओ बिंदास और हाथ में माला ले लो, यही अकर्म है। लेकिन नहीं, अकर्म का अर्थ है कि ऐसा कर्म करना जिसका आपको रिएक्शन ना हो, बंधन ना हो, तो वो कर्म अकर्म कहलाता है। और वो कर्म है जब हम कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करते हैं। तो इन तीन प्रकारों के कर्मों का वर्णन हुआ है, इसलिए भगवान कहते हैं तस्मा सर्वेशु कालेशु मम अनुस्मरणम युद्ध चा मई अर्पितम मना बुद्धि माम एवं एशसी अशंशय। हे अर्जुन, जो तुम क्या करो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, क्योंकि वो चाह रहे हैं ना, भगवत गीता के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन चाहते थे कि वो धारण करने वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावनावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाना चाहता है। तो अर्जुन चाहते थे कि मैं एक ऐसे स्थान में चला जाऊं जहां बैठ के जप करूं, ये युद्ध वध मेरा मन नहीं करता युद्ध करने का। तो भगवान ने बोला चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभागशः। मैंने चार वर्णन वर्णों में इसको विभाग किया है। ब्राह्मण का कर्तव्य है क्या? पठन पाठन यजन याजन, वो पढ़े और दूसरों को ज्ञान प्रदान करे, है ना। और क्षत्रिय का कर्म क्या है? युद्ध करे, शौरम वीजम तेजम धृति दाक्षम, वो ऐसे करे, लड़ाई करे जाकर। और तुम जो भाग जाओगे तो तुम्हें ना यश मिलेगा ना ही वीरता मिलेगी, तुम क्यों भागना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं? तो उन्होंने बताया अगले अध्यायों में आप पढ़ेंगे कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। जैसे एक होता है ना लेबर क्लास होती है, लेबर क्लास कैसे काम करती है? बच्चा पड़ा है रोड़ी के ऊपर और इधर मंदिर का निर्माण चल रहा है या किसी बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, निर्माण बिल्डिंग के ऊपर भी ध्यान है और बच्चे के ऊपर भी ध्यान है। तो अपना कर्तव्य करते रहो लेकिन साइड में कृष्ण भावना भवित रहो। कृष्ण भावना भवित होने का मतलब ये नहीं फुल टाइम मंदिर में आके बैठ जाओ, इसका मतलब है अपना कर्म करते हुए सदा कृष्ण का स्मरण करो, ये कर्म योग है। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कार चला रहे, गाने सुन रहे, फिल्मी, कौन कौन से फिल्मी गाने होते हैं बताना, कौन से फिल्मी गाने होते हैं किसी को मालूम? हाँ प्रभु जी बताएंगे कौन से फिल्मी गाने होते हैं। जैसे आते हैं ना कोई फिल्मी गाना बताइए, कैसे FM चला देते हैं लोग और गाना चला रहे हैं, जो भी मतलब फिल्मी गाना गा रहे हैं। और साथ में एक भक्त है जो कार चला रहा है, वो कार चलाते चलाते क्या गा रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वो ऑफिस जा रहा है, उसका काम कर्म योग है। और एक व्यक्ति जो फिल्मी गाने सुन के जा रहा है वो कर्मी है। कर्मी और कर्म योग में फर्क है, इसको एक मत समझिए कि हम भी कर्म करते हैं और वो भी कर्म करता है। नहीं, एक भक्त जो कर्म कर रहा है देखने में कर्मी जैसा है लेकिन वो कृष्ण भावना भवित कर्म है, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है। वो जाता है नौकरी करके आता है, बाद में जो फल मिलता है उसे मंदिर में दान दे देता है, तो ये क्या हो जाता है? उसने अपने कर्म फल को भगवान के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार से जो कर्म करता है उसे कर्म योग कहते हैं। देखिए तीन प्रकार के गुणों का वर्णन हुआ है। एक गुण होता है तमोगुण, एक होता है रजोगुण और एक होता है सतोगुण। तमोगुण में जो व्यक्ति है वो खाली ये चाहता है कि मैंने जो कर्म किया है उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तमोगुणी व्यक्ति है। है आप में से ऐसा कोई जो हर वक्त यही सोचता रहता है कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मैंने तो इतनी मेहनत की क्या मिलेगा? वो होता है तमोगुणी व्यक्ति है। जो भी ऐसा सोचता है वो एहसास कर सकता है हम तमोगुणी है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे बस कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं, कर्म करना है, वो कौन है? रजोगुणी व्यक्ति है, जो सिर्फ कर्म करने में लगा हुआ है। 8 घंटे 12 घंटे 13-13 घंटे वो नौकरी करता है और सोचता है फल जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन वो भी कौन है? रजोगुणी है। और सत्वगुणी व्यक्ति किस लिए कर्म करता है? कि मैं जो भी कर्म करूं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करूं, तो वो व्यक्ति कौन है? सतोगुणी व्यक्ति है। अब देखिए इन तीन प्रकार के गुणों का क्या फर्क पड़ता है। जब हम अपना जीवन सतोगुण में जीते हैं तो फर्क देखिए क्या होता है। एक व्यक्ति मंदिर निर्माण हो रहा था एक जगह पर, 3 मजदूर काम कर रहे थे, मतलब बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, तो एक ने आकर पूछा अरे भैया क्या कर रहे हो? तो जो तमोगुणी व्यक्ति था वो क्या बोला? अरे क्या कर रहे हैं साहब, ईंटें तोड़ रहे हैं। क्या बोला? क्या कर रहे हैं साहब, ईंटें तोड़ रहे हैं। और रजोगुणी व्यक्ति क्या बोला? अरे साहब हम बहुत सुंदर जो है यहाँ पर कमरे बना रहे हैं, दीवारें बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना। और एक बोला कि हम क्या कर रहे हैं? मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। आखिरकार उसके हर एक पत्थर को मंदिर की एक दीवार में लगना है। तो जो ये सतोगुणी व्यक्ति बोला मंदिर में निर्माण है, जो व्यक्ति बोला कि जी कमरे बना रहे हैं वो रजोगुणी है, जो बोल रहा है कि क्या कर रहे हैं ईंटें तोड़ रहे हैं वो दुखी है, क्योंकि वो तमोगुण में है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भवित नहीं है। इसलिए हमें हर एक काम को भगवान से जोड़ना चाहिए। पानी पिया, आ हा हा हा, जल का स्वाद कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हूँ, रसो अपियस हम कौन्तुए, जल का स्वाद मैं हूँ, बस जल पिया और भगवान याद आ गए, हो गया कृष्ण भावना भवित। भोग लगाया भगवान को, हो गया नवेद्यम, भोग खाया, प्रसाद खाया, महाप्रसादे गोविंदे, बस हो गया भगवान का। और वही आदमी खा रहा है रेडिसन ब्लू में जाकर, लेकिन वो जो है कर्मी है, और जो भगवान का भजन भोजन खा रहे हैं वो कौन है? कर्म योगी है। तो कर्म योगी बनना श्रेष्ठ है, यहाँ पर यही बताया गया है। और एक बार देखिए, एक जगह पर एक दीवार थी और उसको बहुत पेंट किया गया नया, और बहुत रईस व्यक्ति था, उसका घर था बहुत बड़ा सा, उसने अपनी बिल्डिंग को चारों तरफ से पेंट कराया और कहा अपने चौकीदारों को, देखना यहाँ कोई लिखे नहीं, यहाँ पर कोई लिखे नहीं, कुछ चिपकाए नहीं। तो एक बच्चा आया, बोला अगर लिख दिया तो क्या करोगे, लिख दिया तो क्या करोगे? तो सिपाही बोले भाई साहब पैर भी तोड़ेंगे, जेल में भी डालेंगे और तुम्हारे से डोनेशन भी एक्सेप्ट करेंगे, कुछ तुमसे दान भी ले लेंगे। तो बोले अच्छा, और मैं भाग गया तो? तो बोले नहीं, हम पकड़ लेंगे कहीं भी तुम भागो। तो उसने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ, पकड़ के दिखाओ। तो उसने लिखा, यहाँ पर लिखना और चिपकाना मना है, यहाँ पर लिखना और चिपकाना। अब वो पकड़े, वो बच्चा भागा, सारे सिपाही पीछे भागे और उसको पकड़ के लाकर उस रईस व्यक्ति को दे दिया। रईस व्यक्ति ने कहा तुमने क्या लिखा? कह रहे चलकर देखिए, दीवार गंदी कर दी साहब, इसने दीवार गंदी कर दी। सिपाही बोले बाहर आकर देखा क्या लिखा था, यहाँ लिखना और चिपकाना मना है। ओ मालिक खुश हो गया, वाह वाह क्या बढ़िया चीज लिखी है तुमने तो, वाह मेरे बच्चे वाह वाह। क्यों? क्योंकि उसने काम भी किया, पर भगवान अपने मालिक की प्रसन्नता के लिए किया। हम भी वही काम करेंगे, लेकिन करेंगे किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो हमें बंधन नहीं है, भगवान खुश होते हैं और वही काम लोग भी करते हैं। और खाना हम भी खा रहे हैं ना, भक्त भूखे रहते हैं क्या? आप लोग कभी भूखे गए पंडाल से वापस? नहीं। लेकिन एक बाहर का व्यक्ति खाता है वो बंधन में है और आप मुक्त है। तो इसका कारण यही है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य अपने जीवन में करते हैं। कहते हैं कि पुरुष प्रकृति स्थितो ही भोगते प्रकृति जना गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। जो व्यक्ति जिस प्रकार के गुणों में काम करता है सद असद योनि जन्मसु, उसी के कारण उसको वैसी योनि प्राप्त होती है। एक घोड़ा तेज भागता है, कुत्ता तेज भागता है? घोड़ा तेज भागता है। क्यों? ज्यादा एफर्ट लगाता है। दोनों के पीछे गोली लेके भागो मारने के लिए, तेज कौन भागेगा? दोनों को मारने के लिए भागो, कौन तेज भागेगा? हाँ, घोड़ा कि कुत्ता? आधे बोल रहे कुत्ता, आधे बोल रहे घोड़ा। एक एक मत हो जाइए, अब तो सरकार भी एक है। हाँ क्या? कुत्ता घोड़ा, कुत्ता घोड़ा, अरे एक तो बोलो। हाँ घोड़ा, माता लोग बोल रहे घोड़ा। घोड़ा तेज इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसका शरीर ऐसा है कि वो तेज भाग सकता है। क्यों शरीर प्राप्त हुआ? सद असद योनि जन्मसु कारणम गुण संगो अस्य, जिस प्रकार के गुणों का संग किया उस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि हम जो है खाएं पिए सोएं और मजे करें, इसलिए प्राप्त हुआ कि भगवान के नामों का भजन करें। कहते हैं कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी है, सारे के सारे की नहीं है? हाथ खड़ा करिए। वाह वाह वाह, दुखी सभा। कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी है ना, और कोई धन ना मिलने पर उदास है। धन नहीं मिलता तो उदास है। कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी, कोई धन ना मिलने पर उदास है, और थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी कृष्ण के। हाँ, तो इसलिए कृष्ण का दास बनने का प्रयास करिए, ऐसा प्रयास ना करिए कि यहीं पर रह जाएं। तो इसलिए कृष्ण चरणों को जोर से पकड़ लीजिए, है ना। भगवान के दास जो होते हैं वो कभी भगवान से मांगते नहीं है। क्या नहीं करते? मांगते नहीं है। क्यों? दास का कर्म मांगना नहीं है, स्वामी मांगता है। आपके घर में काम वाली आती है, आप उसको ऑर्डर देते हैं या वो आपको ऑर्डर देती है? आप ऑर्डर देते हैं ना, काम वाली, यहां पोछा करिए, यहां झाड़ू करिए, यहां बर्तन। तो आप स्वामी हैं और वो दास हैं। इसी तरह कृष्ण भगवान से बोलते मेरा ये पूरा करा दो, बच्चे को वास करा दो, ये ऑर्डर देते हैं रोज की रोज। ऑर्डर देना आपका काम नहीं, ऑर्डर देना भगवान का काम है। भगवान ने ऑर्डर दिया माला का जप करो, भगवान ने ऑर्डर दिया गीता का पाठ करो, भक्तों का संग करो, प्रसाद का सेवन करो, ये भगवान का ऑर्डर है। भगवान का ऑर्डर मानेंगे तो दास है, भगवान को ऑर्डर देंगे तो स्वामी है। तो आप देखिए, डिसाइड करिए आपको स्वामी बनना है कि दास बनना है। सुखी वही है जो कृष्ण दास है, याद रखिएगा इस चीज को। और देखिए बड़ी अच्छी चीज बताते हैं कि अगर माँ बाप के साथ कभी कोई छोटा बच्चा बाजार जाए, आपके बच्चे जाते होंगे अक्सर आपके साथ, तो जब बच्चा बाजार जाता है और क्या करे, मान लीजिए एक शॉप दुकान पे जाते हैं और उसमें जाकर टॉफी मांगता है बच्चा, माता जानती है पहले से है, टॉफी मांगता है। तो बच्चा से पूछते हैं कि क्या खाओगे बेटा, तो वो कहता है क्या? माँ बाप सोचते हैं कि आज इसको दिलवाएंगे बड़ी वाली चॉकलेट, 50 रुपए वाली या 20 रुपए वाली। और बच्चा क्या कहता है? नहीं मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे चार, ये छोटी वाली चार। उसे चार की गिनती नजर आ रही है, चार छोटी वाली, वो 50-50 पैसे की 2 रुपए की टॉफी लेके खुश हो जाता है। और भगवान अगर वो देते माँ बाप तो कितने रुपए की देते? 20 रुपए की, 50 रुपए की। ऐसे ही कृष्ण जब देंगे तो 50 रुपए का देंगे, और आप जब लोगे तो 2 रुपए का लोगे। इसलिए मत मांगो, निष्काम कर्म योग करो, भगवान से बिना मांगे भगवान की भक्ति करो, तो आपको क्या होगा, जीवन में आनंद प्राप्त होगा, है ना। इसलिए हमको भगवान की शरण पकड़ लेनी चाहिए। एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार एक जेल था राजा का, उस राजा के उस जेल के अंदर जो दो कैदी थे, दोनों ने सोचा कि यहां से भाग जाते हैं, यहां से बहुत कष्ट है, रोज कोड़े पड़ते हैं, मारा जाता है, दुख मिलता है, पत्थर तुड़वाए जाते हैं, भाग जाते हैं यहां से। तो दोनों कैदियों में से एक कैदी ने क्या किया, रात को गुफा खोदनी शुरू कर दी और धीरे से एक दिन गायब हो गया। बच गया क्या? बच गया नहीं बचा, पुलिस वाले भागे उसके पीछे पीछे और कैप्चर कर लिया, खचक वापिस लाके डाल दिया। बोले इस बार ऐसी जेल में डालो जहां पर नीचे आयरन का फ्लोर हो, तोड़ ही ना सके। डाल दिया और उसमें आग भी लगा देते जलाने के लिए, वो कूदता रहता था जलता है। और एक प्रकार का भक्त था जिसने सोचा, मतलब एक जेल जेली था जो व्यक्ति था कैदी, उसने सोचा मैं भी जाना चाहता हूं। लेकिन उसने क्या किया, जेलर के पास गया और बोला जेलर साहब मैं बहुत दुखी हूं इस जीवन से, मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूं। तो जेलर साहब ने कहा ठीक है, जो जेल के नियमों को पालन करो। क्या नियम है? कि सही समय पर उठो, सही समय पर खाओ, सही समय पर क्लास में आओ, ऐसे बोल दिया। तो वो भी क्लास देते हैं ना सारे कैदियों को, देशभक्त बनो, अच्छे इंसान बनो, उस क्लास में जाते थे, है ना। तो इस प्रकार से जब उसने पालन किया उनके रूल्स का, तो एक दिन जेलर खुश हो गया और बोला राजा के साथ में जाकर, बोला राजा साहब आपको कुछ सेवकों की जरूरत थी, तो ये देखिए ये बहुत अच्छा सेवक है, ये सारे के सारे रूल्स को पालन करता है, बड़ा विनम्र है, कभी अगेंस्ट नहीं गया। तो उन्होंने कहा अच्छा इसको क्या करो, चेंज करके जेल से निकालकर सीधा राजमहल में सेवा में डाल दो, क्योंकि सेवा तो करने की इसकी आदत है। तो अभी देखिए जो भागना चाहते हैं वो इस भौतिक संसार जेल के समान है ना, इससे जो भागना चाहते हैं ये ऑप्शन ऐसा कर देंगे, LIC ये प्रोटेक्ट, फिर उनको वापस लाकर लोहे के जंजीरों में डाला जाता है। इसलिए सुबह बोलते हैं संसार दावा नल लीड लोका, संसार में आग लगी हुई, तप रहे हम लोग, जल रहे हैं, लेकिन चाहते हैं गुफा के जरूर भागना, नियम पालन करके नहीं जाना चाहते। जो नियम पालन करेंगे उनको फिर क्या होगा, ये दुर्गा देवी जो इस संसार की देवी है वो कृष्ण को बोलेंगी कि देखिए ये बहुत अच्छा दास है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही ये पालन करता है। तो भगवान कहेंगे ठीक है इसका टिकट काटो जहां से और इसको डायरेक्ट गोलोक धाम में सेवा में लगाओ परमानेंट। तो आप जाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट भगवान की सेवा प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं हरिम बिना न मृत्युम तरंती, है ना, मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एवं न संशय, मुक्ति प्रदान करने वाले सिर्फ एक कृष्ण है और कोई नहीं है। इसलिए निष्काम कर्म योग करिए, भगवान से बिना कुछ मांगे हुए भगवान के चरणों में लगे रहिए, सेवा करते रहिए, भगवान के बताए गए भक्तों के अनुसार, यहाँ पर इतने सारे भक्त हैं मंदिर में, जैसा आपको आदेश दें उनका पालन करिए। 16 माला का जप बोलते हैं तो प्रयास करिए 16 माला का जप करिए, और फिर गीता का अध्ययन करिए, प्रसाद का सेवन करिए, संडे क्लास में आइए, तो आप देखिए आप जो है क्या करेंगे, कर्म योग कर रहे होंगे अपने जीवन में। एक छोटी सी लीला के बारे में हम चर्चा करेंगे फिर समाप्त करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर हुआ है आज कि जो लोगों का कोई प्रश्न हो तो अपनी एक पर्ची में लिख कर दे सकते हैं, जब तक मैं ये लीला समाप्त करूंगा उसके बाद हम प्रश्न उत्तर का सेशन कर सकते हैं। तो किसी के कोई क्वेश्चन है ना तो छोटे छोटे चिट्स पे लिख सकते हैं अपने, क्योंकि कोई बोलना नहीं चाहता है तो चिट में लिख कर दे सकता है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये कि पिछले संडे को कौन क्या था, रुक्मणी द्वादशी, जानते हैं कितने लोग जानते हैं रुक्मणी द्वादशी थी, पीछे के लोग सो गए। हाँ रुक्मणी द्वादशी थी, रुक्मणी द्वादशी क्या होता है, हाँ जी आप नहीं बताएंगे, हाँ जी माता लोग क्या होती है रुक्मणी द्वादशी, पिछली बार अभिषेक किया था आपने, क्या होता है हाँ? माता लोग बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही। हाँ रुक्मणी जी का बर्थडे है, रुक्मणी जी जो है उनका बर्थडे है। तो आप देखिए ये बहुत बड़ी लीला है, इसको रुक्मणी मंगल कहते हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि समय कम है। तो हम इसको छोटी सी लीला को समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही गूढ़ विषय है, आपके जीवन को पूरा बदल सकता है ये। आप देखिए कि रुक्मणी जो है वो चाहती है किसको, कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने एक बार श्रवण किया किसी एक भक्त से, नारद मुनि से, कि कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उनके हाथों में बांसुरी रहती है, उनका ऐसा वर्ण, इतना सुंदर रंग है, श्याम सुंदर कलर है उनका, उनके पास रथ है, वो इस तरह से चलते हैं, इस तरह से बोलते हैं। श्रवण मात्र से रुक्मणी ने अपना पूरा का पूरा हृदय किसको दे दिया, कृष्ण को दे दिया, श्रवण मात्र से। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रवणम कीर्तनम करे जल सिंचन, आपका भक्ति रूपी बीज जो है उसको जल सिंचन कर सकते हैं आप, कैसे, श्रवण और कीर्तन करके। जब आप श्रवण कीर्तन करेंगे तो आपका भक्ति रूपी बीज बड़ा हो जाएगा, अन्यथा खत्म हो जाएगा, इसलिए श्रवण करना अत्यधिक जरूरी है। तो फिर रुक्मणी श्रवण कर रही है नारद मुनि से कृष्ण के बारे में, और अपना हृदय उन्होंने कृष्ण को समर्पित कर दिया। रुक्मणी के 5 भाई हैं, उसमें से सबसे बड़े भ्राता हैं उनके, उनका नाम है रुक्मी, और रुक्मी चाहते हैं कि रुक्मणी की शादी किससे हो, शिशुपाल से हो। तो बताते हैं हमारे आचार्य कि शिशुपाल मन के समान है, किसके समान, मन के समान, और रुक्मी जो है रुक्मी मन के समान है, और शिशुपाल भौतिक संसार के समान है, कैसे समान है, भौतिक संसार। और कृष्ण तो कृष्ण भगवान है और रुक्मणी जो है वो कौन है, एक जीव आत्मा है, और जो नारद मुनि है वो कौन है, गुरु है, है ना। तो गुरु के बताए रास्ते पर रुक्मणी ने कृष्ण को अपना हृदय दे दिया, लेकिन मन रुक्मी चाहता है कि वो शिशुपाल भौतिक संसार में ही रह जाए। वो पूरा प्रयास करता है कि जैसे तैसे करके इसको भौतिक संसार में फंसा दूं, ये निकल ना पाए, है ना। यही तो हमारा मन चाहता है, भगवान चाहेंगे कि भाई मंगला आरती आओ, लेकिन हमारा मन बोलेगा सो जा, क्या करेगा जाके, खामा खा एक घंटा वेस्ट हो जाएगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे, लंच बॉक्स लेट, ऑफिस में क्या करेगा, नींद आएगी, मन बोलता है इस प्रकार से। और फिर हम मन के सहारे हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्या आरती है। अरे आप मंदिर में जा सकते, कम से कम घर में उठ के तो करिए, मंगला आरती करिए, भगवान का मंगल भजन गाइए, जब उठे 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, 4:30 उठे, भजन करिए भगवान का। लेकिन मन को जीतने का प्रयास करिए, भगवान के शरण में जाने से ही आप मन को जीत सकते हैं। और फिर रुक्मणी ने क्या किया कि एक ब्राह्मण का हेल्प कर एक लेटर लिखा, किसको, कृष्ण भगवान को, कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, तो कृपया करके आप मुझे लेने आइए, क्योंकि मेरा आज स्वयंवर है और शिशुपाल मुझे ले जाना चाहता है। तो फिर कृष्ण भगवान वहां पर आते हैं अपने भक्त की पुकार सुनकर, और फिर किसको ले जाते हैं, रुक्मणी को, पार्वती देवी के मंदिर से उठाकर रथ में बिठा लेते हैं। लेकिन रुक्मणी को जैसे ही पता चलता है, उनके भ्राता को, अपनी तलवार निकाल के पीछे पीछे भागता है कि जैसे भी करके मैं रुक्मणी को जाने नहीं दूंगा। रुक्मणी कौन है, कौन है, जीव आत्मा, कृष्ण कौन है, भगवान, और रुक्मणी कौन है, मन, और शिशुपाल कौन है, भौतिक संसार। रुक्मी चाहता है इसको जैसे भी भौतिक संसार में लगा दूं। रथ भाग रहा है, उसके बाद भी रुक्मी अपनी तलवार से रुक्मणी जीव आत्मा को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन क्या करता है, रोक पाता है नहीं। क्यों, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है वो फिर क्या करता है, माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरण में आता है वो माया को आसानी से पार कर जाता है। इसलिए भगवान का भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का भजन कौन सा करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक राजा था, राजा ने क्या किया, एक दिन घूम रहा था अपने राज्य में, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति हरे कृष्णा का जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो पूछा किसी भक्त से, अपने सिपाही से, भाई ये कौन है इतना शोर मचा रहा है राज्य में। बोले ये महामूर्ख आदमी है। कौन है, महामूर्ख है। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर एक काम करो, पता करो सबसे बड़ा महामूर्ख असली कौन है, ये तो तुमने बोला कि महामूर्ख है, लेकिन पता करो यही है या कोई और भी महामूर्ख, इससे बड़ा महामूर्ख है, अगर नहीं पता किया तो तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। अब राजा की बात सुन के सेनापति डर गया, पूरे राज्य में घूमने लगा और पूछने लगा, आप महामूर्ख हैं। और लोग, भाई हम क्यों महामूर्ख हैं, तू होगा महामूर्ख, ऐसे बोल रहे थे, महामूर्ख है सबसे पूछा। लास्ट में भजन कर रहे थे जो बाबा जी, उनसे देखा भक्त ने, सेनापति इधर आओ, शाम हो गई, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। कह रहे हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कोई महामूर्ख है हमारे राज्य में, उसको एक सोने का सिक्का भी गिफ्ट करूंगा अगर वो महामूर्ख होगा, राजा ने कहा है, लेकिन अगर नहीं बता पाया तो रात को मेरी गर्दन कलम हो जाएगी, आप मुझे बचा लीजिए। बोला हाँ, मेरे से बड़ा महामूर्ख कौन है, तो मुझे दे दो सिक्का। तो भक्त को सिक्का देकर वो जाने लगा, जैसे जाने लगा तो भक्त ने क्या किया, सिक्के को देखा और ऐसे फेंक दिया कूड़ेदान में फेंक दिया। जब कूड़ेदान में फेंका तो सोचने लगा, सच में सिपाही, वाह ये तो सच में महामूर्ख है, धन को फेंक दिया उठा के। राजा को बोला, राजा यूरेका, मैंने ढूंढ महामूर्ख है हमारे राज्य में, एक वो जो पेड़ के नीचे बैठ के क्या करता है, अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार से बोला, राजा खुश हुआ, अच्छा एक महामूर्ख है। हाँ, और कुछ समय बीतने के बाद राजा का अंतिम समय आ गया। राजा जब जा रहा था तो रो रहा था, हाय मेरी पत्नियां रानियां, हाय मेरा धन, सब कुछ छूट जाएगा। तो फिर वो जो महामूर्ख भक्त थे वो वहां पहुंचे और बोले, राजा तुमने क्या कमाया पूरे जीवन, क्या लेकर जा रहे हो अपने साथ, एक भी रानी जा रही है, नहीं जा रही, कुछ धन जा रहा है, नहीं जा रहा, ओ मैं तो बड़ा मूर्ख था, मैंने इतना सब मेहनत करके ये कमाया, कुछ मेरे साथ नहीं जा रहा, आप बताओ मेरे साथ क्या जा सकता है। बोले, जा सकता है भगवान का नाम, है ना, जैसे चाइना में जाते हैं तो कौन सी करेंसी चलती है, येन, रशिया जाते हैं तो कौन सी करेंसी चलती है, डॉलर, अमेरिका जाते हैं तो क्या चलता है, अमेरिकन डॉलर, है ना, और इंडिया में आते तो कौन सी चलती है, रुपया। तो भगवान के घर में कौन सी चलेगी, हरी नाम। तो हरि नाम धम तो तुमने कमाया ही नहीं। तो बोला हाँ मैं तो सच में महामूर्ख था। बोले ये सिक्का बड़े दिन से संभाल कर रखा है, आप ले लो, आप महामूर्ख हो बड़े। सिक्का राजा को पकड़ा दिया। तो ये देखिए ऐसी स्थिति हो जाती है व्यक्ति की, और फिर वो महामूर्ख चला गया। हरि नाम एक ऐसा धन है कि उसको कोई टैक्स में आपसे काट नहीं सकता। इनकम तो काटते ना, इनकम टैक्स, हरि नाम का टैक्स कटता है क्या? बढ़ता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, रोज बढ़ेगा, कटेगा नहीं। हरि नाम का भजन जो करेगा उसका आनंद बढ़ेगा, वो कटता नहीं है, कोई उसको नहीं काट सकता। रास्ते में निकल रहे हो, चेन खींच लेगा, कपड़ा खींच लेगा व्यक्ति, लेकिन हरि नाम नहीं खींच सकता। जब अलेक्जेंडर थे ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने नाम सुना होगा, सिकंदर, सिकंदर महान, जब मर रहे थे तो उन्होंने बोला जब मुझे दफना हो तो मेरे इस हाथ को कब्र से बाहर रखना। तो उन्होंने बोला क्यों? बोले इससे मैं एक शिक्षा देना चाहता हूं, मैंने इतने सारे पूरे विश्व में विजय प्राप्त करी, आखिर में मुझे उल्टी वामन कैंसर जैसा डिसीज हो गया जिसके कारण मुझे वापिस आना पड़ा, और आज मैं मर रहा हूं, मैंने क्या पाया पूरे जीवन में? इतने बड़े झंडे गाड़े लेकिन पाया क्या? कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जा रहा। और फिर उन्होंने कहा कि लोगों को शिक्षा देना चाहता हूं कि जिसके पास इतना धन था वो एक सिक्का भी लेके नहीं जा रहा है, और खाली हाथ आया है, खाली हाथ जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं सिकंदर कर दुनिया के घर, सिकंदर कर दुनिया के घर, सभी मुल्कों का माली था। इकट्ठे कर सिकंदर दुनिया के घर, सभी मुल्कों का माली था। जब चला सिकंदर दुनिया से तो दोनों हाथ कुछ लेकर अपने साथ नहीं गया। इसलिए एक ही चीज आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, क्या है वो? कृष्ण भावना भवित हरि नाम, भगवान का भजन करिए, उसी को कहते हैं कर्म योग। तो अब योगी बने, योग का अर्थ है जुड़ना भगवान से, जैसे तैसे ये इन किन प्रकार इन भगवान से जुड़ जाइए, और क्या करिए? कर्म योग करिए, निष्काम कर्म योग, बिना किसी इच्छा के बस लगे रहिए। किसमें? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमारे पास 5-10 मिनट हैं, अगर कोई प्रश्न है, किसी की ने चिट लिखी है तो दे सकते हैं, अगर माइक पे पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। प्रभु जी का एक प्रश्न है, माइक देना चाहते हैं।
प्रभु जी हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा।
मेरे एक प्रश्न है
जी,
जिस तरीके से राधा जी पूरे विश्व में चर्चित है उस तरीके से रुक्मणी
ऐसा है? प्रभु जी ने प्रश्न पूछा, आपने सुना कि राधा रानी जिस तरह से प्रचलित हैं, रुक्मणी जी उस तरह से प्रचलित नहीं है। देखिए ऐसा है कि राधा रानी कौन है? भगवान की अंतरंग शक्ति है। शक्तिमान है कौन? कृष्ण। और अंतरंग शक्ति कौन है? राधा रानी। शक्ति के बिना शक्तिमान कैसा है ना? लेकिन जब भगवान स्वरूप लेते हैं नारायण के रूप में, तब भगवान जब द्वारका की लीलाएं करते हैं तो लक्ष्मी स्वरूप और रुक्मणी के साथ विवाह करते हैं, लेकिन राधा रानी के साथ विवाह जैसा संबंध नहीं है। उनके साथ कैसा संबंध है? अंतरंग शक्ति के। आप देखें कभी कभी आप लूज हो जाते हैं ऐसे, तो बोले प्रभु जी वीक हो रहे हैं, ग्लूकोन डी पीजिए, ग्लूकोन डी, एनर्जी वापिस आ जाएगी। तो आपके अंदर क्या है? एनर्जी है। वो एनर्जी कृष्ण की कौन है? राधा रानी है ना। तो वो राधा एनर्जी के बिना आप कभी होते हैं? लेकिन वाइफ के साथ तो कभी कभी आप ऑफिस में नहीं होते हैं ना, लेकिन एनर्जी के साथ हमेशा होते हैं। तो कृष्ण राधा के साथ इसलिए हैं क्योंकि उनकी अंतरंग शक्ति सदा उनके साथ विराजमान होती है। इसी के कारण लोग रुक्मणी के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि वो रुक्मणी के बारे में जानेंगे जो इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। जो ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे वो तो फिर राधा रानी को भी क्या समझते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड थी। सच बात है। एक बार अफ्रीका में क्या हुआ था कि वहां पर कुछ डकैत आ गए थे इस्कॉन मंदिर के अंदर। वहां पर काले लोग होते हैं ना, तो वो चाहते हैं गोरे लोग गोरी स्त्रियों के साथ शादी करी जाए, और वो आकर बोले सबको हैंड्स अप। और देखा कि राधा रानी के साथ में श्याम सुंदर काले रंग के खड़े और राधा रानी गोरे रंग की है। तो उन्होंने क्या किया? बोला हैंड्स अप। तो सारे भक्तों ने हैंड्स अप कर लिया। तो उन्होंने देखा ब्लैक मैन विद व्हाइट वुमेन, काला आदमी सफेद औरत के साथ। कह रहे यस, कह रहे लीव देम, चले गए वहां से। कह रहे ये बढ़िया अफ्रीकन है। कौन? कृष्णा। तो इस तरह से है, इसलिए है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी का प्रश्न है।
भगवान जो सूर्य नारायण है और जो कृष्ण है उनके बीच में क्या समानता है? क्या सूर्य ही कृष्ण?
भगवान भगवान के एक भक्त हैं जिनका नाम है ब्रह्मा जी, आप जानते हैं सृष्टि के रचेता ब्रह्मा जी। अभी जैसे बताया केशव में क का अर्थ है ब्रह्मा, श का अर्थ है शिव, कृष्ण वो है जिनके अंदर से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति होती है, सब कुछ भगवान के अंदर से ही निकलता है। तो जो कृष्ण है उनके भक्त हैं ब्रह्मा, उन्होंने एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम है क्या, ब्रह्म संहिता, है ना, सुनते हैं आप मंदिर में सुबह भजन होता है गोविंद मादे पुरुषम, सुना है तमहम भजामी, तो वो गोविंद मादे पुरुषम में बताया गया है उसी शास्त्र के अंदर, यक्षरेषु सविताम सकल ग्रहणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर्शेष तेजम यस्याज्ञा भ्रमति संभ्रत काल चक्रम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामी। जो बताया गया है कि कृष्ण भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा, भगवान की आज्ञा अनुसार ये लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं और भगवान की आज्ञा अनुसार ये काल चक्र के अंदर घूमते हैं, और सूर्य क्या करता है, साक्षात भगवान की आंखें हैं, आप जो कार्य दिन में करते हैं उसको नोटिस करता है। जैसे आप देखें ना, सरकार तो रोड नहीं आती है आपके ट्रैफिक के ऊपर चेकिंग करने, लेकिन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ देती है, हवलदार थानेदार, और वो देखते हैं आपने बेल्ट नहीं लगा रखी, और फिर बाद में आपको कोर्ट तक जाना पड़ता है, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर तक भी रिपोर्ट जाती है। इस प्रकार से कृष्ण के साक्षात आंखें हैं सूर्य और चंद्र, आप देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, सुबह रात को चंद्रमा देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप सोचे मेरा तो घर बंद है कोई मुझे नहीं देख रहा, लेकिन कृष्ण के आंखें आपको सदा देख रहे हैं, ये संबंध है। तो अगर हम कृष्ण समर्पित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सूर्य को समर्पित हैं, अगर सूर्य को देखें तो याद रखना चाहिए ओह कृष्ण के नेत्र मुझे देख रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तब हम बजाएंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न,
हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो आपने योग के बारे में बताया है, जिसने कृष्ण जो है पूरी गीता के अंदर में कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहता है कि योगी का जो न्यूनतम स्तर है वह तपस्वी से ज्ञानी से और सकाम कर्म से भी बड़ा है। अगर योगी का न्यूनतम स्तर तपस्वी से ज्ञानी से और सकाम कर्म से बड़ा माना जाता है तो योगी का बड़ा स्तर क्या हो सकता है?
देखिए योगी का निम्न स्तर यही है कि जो नव दीक्षित भक्त है, भक्तों की तीन श्रेणियां बताई गई है ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी वो है जो अभी अभी ये जानता है कि कृष्ण मंदिर के अंदर विराजमान है और बाकी जगह नहीं है, और मध्यम अधिकारी वो है जो ये जानता है कि कृष्ण के भक्त बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, और हरेक को जो व्यक्ति माला नहीं जपता वो भक्त नहीं है, जो माला जपता है वो भक्त है। और जो उत्तम अधिकारी होता है वो ये सोचता है कि कृष्ण के सब भक्त हैं लेकिन सोई हुई अवस्था में है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होता, वो सबको समान स्तर पर देखता है, वो उत्तम अधिकारी होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक तपस्वी जिसने अपने 40,000 साल गुजार दिए हो पहाड़ों के बीच में तपस्या करके, ओम शांति शांति शांति, उसको शांति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन एक कनिष्ठ भक्त जिसने अभी मंदिर में आना शुरू किया है और अगर उसने गीता का अध्ययन करना शुरू किया तो वो जानता है योक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम रचति। जो व्यक्ति ये जानता है कि कृष्ण ही परम भोक्ता है उस व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाएगी। 40,000 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद बताते हैं, एक भक्त आए और बोले कि प्रभुपाद एक योगी है जो पानी के ऊपर चलता है और उसने अपने जो है 25 सालों में ये तपस्या करके प्राप्त किया है, हाँ इस तरफ से जाता है उधर पैदल पैदल चला जाता है पानी के ऊपर। प्रभुपाद बोले कितने साल वेस्ट किए? बोले 25 साल। तो बोले उसने 10 रुपए की चीज के लिए अपने 25 साल वेस्ट किए। बोले मतलब? बोले 10 रुपए तो बोट वाले को रोड नदी पार करना। तो ऐसे ही जो कनिष्ठ भक्त भी है ये सर्वश्रेष्ठ तपस्वी से हमेशा उच्च होता है। हरे कृष्ण। दूसरा प्रश्न बाद में पूछो और लोगों को।
प्रभु जी।
जी हरे कृष्ण।
अच्छा कृष्ण प्रेम या ईश्वर प्रेम,
How does it happen? भगवान कहते हैं कि कृष्ण प्रेम पाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है आदो श्रद्धा ततो साधु संग। सबसे पहले भगवान के ऊपर श्रद्धा रखिए और उसके बाद साधुओं का संग करिए। तो इस प्रकार से 9 सीढ़ियां आती हैं, साधु संग करेंगे उसके बाद आपकी अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा आएगी, भाव आएगा, इस प्रकार से आप चलते जाएंगे और कृष्ण प्रेम तक आप पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहली सीढ़ी है क्या? श्रद्धा। अगर आपसे बोला जाए प्रभु जी आपको श्रद्धा है, तो सब बोलेंगे यस हमको श्रद्धा है, आपको मुझ में श्रद्धा है, हाँ है आप में श्रद्धा है, तो बोले ठीक है प्रभु जी श्रद्धा है तो एक गेम करके देखते हैं। बोले क्या? इस टेंट में आग लगा देते हैं, है ना। और फिर मैं आपसे कहता हूं कि यहीं बैठे रहिए, यहीं बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। कहेंगे प्रभु जी श्रद्धा तब तक थी जब तक कथा चल रही थी, प्रसाद आ रहा था, अब आग लग गई तो कोई श्रद्धा व्रद्धा नहीं है, सब गई हमारी श्रद्धा। लेकिन कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं, गोपी जन जो उनके साथ गोप गोपी हैं, जब वृंदावन में आग लग जाती है तो जो गोपी गोपी जन गोप हैं वो चिल्लाते क्या है, मम्मी पापा। क्या चिल्लाते हैं? कृष्णा। और कृष्णा जब आते हैं तो कहते हैं कि क्या करो, अपनी आंखें बंद कर इस जमीन पे लेट जाओ, सोचो हरी हरी मासूम नरम घास है। और वो यही सोचते हुए लेट जाते हैं, ये नहीं सोचते हम जल जाएंगे हमारा क्या होगा। और जब देखते हैं आंख खोल के तो कृष्ण ने सारा दावानल पान कर लिया, सारी अग्नि को पी गए और वापिस वैसा ही माहौल हो गया जैसे पहले था। तो ये कृष्ण पर श्रद्धा है। जब हम सोते हैं रात को पंखे के नीचे तो पंखा गिर भी सकता है, लेकिन हम इस श्रद्धा से सोते हैं कि ये नहीं गिरेगा। रक्षति ते विश्वासम ना रक्षति ते विश्वासम, रक्षा करे तो विश्वास, ना रक्षा करे तो विश्वास, ये श्रद्धा है। अगर ये श्रद्धा आ गई तो फिर साधुओं में श्रद्धा आएगी, साधु में श्रद्धा आ गई तो फिर भजन में श्रद्धा आएगी, भजन में श्रद्धा आएगी तो फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। और इस प्रकार से धीरे धीरे आप कृष्ण प्रेम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। अभी हमारे 9 बज गए, तो जिसको कोई प्रश्न है तो फिर वो बाद में आके प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग प्रसाद के लिए वेट कर रहे हैं। जिनको प्रश्न नहीं है तो बाकी सब लोग प्रसाद ले सकते हैं, और जिनको प्रश्न है वो मेरे पास आके पूछ सकते हैं। प्रसाद नहीं ले सकते अभी, आपको 5 मिनट कुछ इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे, बताया है ना नियम का पालन करने के लिए, तो वो यहाँ पर बताएंगे कुछ बात।
हरे कृष्णा। तो प्रशांत मुकुंद।